समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये भाव है एक विजनरी लीडर की, जिन्हें जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिन्होंने भारत को एक दिशा दी, भारत की राजनीति में एक नया आयाम गढ़ा। इनके बारे में हम बात करेंगे कार्यक्रम में आगे। फिलहाल आज सवेरे कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन करते हैं हम दो होस्ट। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और मेरे साथ हैं रेणु कटारिया। नमस्कार रेणु।
नमस्कार एंड हेलो देवेंद्र एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। एंड डियर लिसनर्स, on this beautiful Friday morning we bring to you our ever exciting daily news magazine program Aaj Savere, wherein over the next half an hour we will bring you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 16th of August. So Devendra, let's begin with the headlines first.
Ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार राष्ट्र को मजबूत बनाने और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के इरादे से सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए शासन में सुधार आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि बैंकिंग, पर्यटन, एमएसएमई, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन और कृषि क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में नई तथा आधुनिक प्रणाली स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप में आया उछाल देश को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इस समय पूरा ध्यान हरित विकास और हरित रोजगार पर है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के प्रति हिंसा और अपराधों के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की।
वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर विल एम्बार्क ऑन अ टू डे विजिट टू तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश फ्रॉम टुडे। मिस्टर धनकर विल विजिट काना शांति वनम इन हैदराबाद टुडे। टुमारो द वाइस प्रेसिडेंट विल विजिट अक्षरा विद्यालय कैंपस एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर, द स्वर्ण भारत ट्रस्ट एंड द मुप्पावरप्पू फाउंडेशन एट नेल्लोर इन आंध्र प्रदेश। ही विल ऑल्सो प्रिसाइड द 23rd एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ स्वर्ण भारत ट्रस्ट वेंकटचलम इन आंध्र प्रदेश।
जी, और रेणु, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतरिक्ष में नई उड़ान भर रहा है, और ये हमने देखा भी है पिछले कई वर्षों से। इसरो ने हर वर्ष एक नए इनोवेशन के साथ, नए कीर्तिमान के साथ अंतरिक्ष में अपनी पहचान, अपनी दखल और बढ़ा दी
बढ़ाई है। जी,
तो इसी से जुड़ी एक खबर और है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण करेगा। प्रक्षेपण की यह प्रक्रिया सुबह 9:17 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुरू होगी। इसके साथ ही स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के विकास की परियोजना का कार्य पूरा हो जाएगा और ये छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए सेवा देने में पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा। पीएसएलवी की तुलना में 10 मीटर छोटे रॉकेट SSLV का इस्तेमाल पृथ्वी की निचली कक्षा में छोटे, कम वजन वाले और नैनो सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित करने में किया जाएगा। SSLV अंतरिक्ष में कम लागत के कई उपग्रह को छोड़ने में और कम से कम प्रक्षेपण बुनियादी ढांचे के साथ प्रक्षेपण मिशनों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीएसएलवी की तुलना में SSLV की लागत लगभग 20-30% कम है।
External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will be on an official visit to Kuwait on 18th of this month. During the visit, Dr. Jayashankar will meet his counterpart Abdullah Ali Al-Yaya. He is also expected to call on the leadership of Kuwait. Dr. Jayashankar's visit will enable both sides to review various aspects of bilateral relations between the two countries, including political, trade, investment, energy, security, cultural, consular and people-to-people contacts. The two sides will also exchange views on regional and international issues of mutual interest. Sweden reported its first mpox case yesterday, a day after the World Health Organization, WHO, declared the infection a global public health emergency. With this, Sweden has also become the first country outside the African continent to report the more contagious strain of mpox virus. The patient is believed to have contracted the virus during a visit to a region in Africa currently experiencing a major outbreak of mpox clade 1. On Wednesday, the WHO declared mpox a global public health emergency for the second time in 2 years, following an outbreak in Democratic Republic of Congo that has spread to other countries.
कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या तथा उसके बाद हुई तोड़फोड़ के विरोध में भारतीय चिकित्सा संघ ने कल सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए देशभर में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रखने की घोषणा की है। चिकित्सा संघ ने कहा है कि सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। आईएमए ने बताया कि सभी बाह्य रोगी विभाग ओपीडी बंद रहेंगे तथा वैकल्पिक सर्जरी नहीं की जाएगी। आईएमए की राज्य इकाइयों के साथ बैठक के बाद गैर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को देशभर में बंद रखने का आह्वान किया गया। आईएमए ने कोलकाता के अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की भी निंदा की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली एनपीएसएस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि एनपीएसएस के माध्यम से किसान विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों से अपनी फसलों का बचाव कर सकेंगे। इस अवसर पर श्री चौहान ने केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी किसानों से भी बातचीत की। केंद्र सरकार ने हाल ही में अधिक उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव फोर्टिफाइड फसलों की 109 किस्में जारी की हैं।
एंड मूविंग ऑन टू स्पोर्ट्स देवेंद्र, इन टेनिस जर्मन स्टार अलेक्जेंडर ज़वरेव ओवरकेम कैरेन कैचनोव इन स्ट्रेट सेट्स एट द सिनसिनाटी ओपन इन यूएसए लास्ट नाइट, बिकमिंग द फर्स्ट प्लेयर टू अर्न 50 टूर लेवल विन्स दिस सीजन। ज़वरेव डिफीटेड कैचनोव 6-3, 6-2 फॉर एन ओपनिंग विन एट द एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट। ही विल प्ले ऑस्ट्रेलियन मैक्स प्योरसेल और स्पेनियर्ड पाब्लो करीनो बुस्टा इन द थर्ड राउंड।
जी, देश और दुनिया की इन प्रमुख खबरों के बाद अब हम रुख करते हैं महानगरों का और जानते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से क्या खबरें हैं। रेनु, आपके पास।
यस, थैंक यू देवेंद्र। आई विल बिगिन विद चेन्नई मेट्रो। IIT Madras will launch BSc B.Ed program next year to enhance the quality of teaching maths. Director V. Kamakoti said that the institution will offer a BSc degree in online mode and B.Ed in collaboration with Tata Institute of Social Sciences. The aim is to train at least 500 teachers a year. There will be more thrust to the idea of the School of Interdisciplinary Studies, which will have faculty members from different departments and offer M.Tech and Ph.D. The Startup 100 will launch a new startup every 3 days this year. Moving on to Bengaluru, Governor of Karnataka, Shri Thavarchand Gehlot, yesterday hoisted the national flag at the Raj Bhavan on the occasion of 78th Independence Day celebrations. Extending his heartfelt regards and commendations, Governor conveyed his appreciation to the diligent police personnel and the assembled audience, acknowledging their unwavering commitment to upholding the spirit of our nation. Further illuminating the occasion, the Governor paid homage to two towering figures in India's history, Mahatma Gandhi, the venerable father of the nation, and Dr. B.R. Ambedkar, the illustrious architect of the Indian Constitution. Adorned with garlands, the statues of those revered leaders stand as perennial symbols of India's enduring ethos and progress. The flag hoisting event at the Raj Bhavan encapsulated the essence of patriotism and unity, underscoring the collective resolve to continue steering Karnataka and the nation towards a brighter, inclusive future. And the last news that I have is from Hyderabad Metro. The Telangana state government has appointed Mahindra Group Chairman Anand Mahindra as the Chairman Board of Governance of the Young India Skill University. Government orders have been issued to this effect yesterday. He will be on this position for 1 year. A public-private partnership initiative, the university aims at providing world-class skill training to youths. The Young India Skills University, or YISU, is a not-for-profit institution that will come up at Mir Khanpet in Rangareddy district and will offer degrees, diplomas, certificates and custom-made courses tailored to the needs of the industry and community through a university school or multidisciplinary courses from multiple schools. And moving on to you, Devendra, let's have some news from Delhi, Mumbai and Kolkata metros.
जी, अमृत उद्यान आज से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आज से आम जनता के लिए पुनः खुल जाएगा. इस बार आगंतुकों को मौसमी फूलों और पौधों को का आकर्षण देखने को मिलेगा, जिनमें बोनसाई गार्डन, रोज गार्डन, सेंट्रल लॉन में विशेष किस्म के फूल आदि शामिल हैं. बच्चों के लिए ट्री हाउस, बाल वाटिका और शिक्षण कक्ष जैसी कई व्यवस्थाएं भी की गई हैं और बच्चों को अमृत उद्यान की भावना से जोड़ने के लिए स्कूली बच्चों को बटन बैज दिए जाएंगे. प्रांगण में एक नई आकर्षक साउंड पाइप प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिनसे बच्चों को एक नया अनुभव प्राप्त होगा और यहां आने वाले आगंतुकों को अद्वितीय और पर्यावरण अनुकूल बीज पत्र स्मृति चिन्ह भी भेंट किए जाएंगे. 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है. वहीं शिक्षक दिवस के अवसर पर केवल आमंत्रित स्कूलों और विश्वविद्यालयों के शिक्षक और छात्र ही उद्यान में भ्रमण कर सकेंगे. लोग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उद्यान में भ्रमण कर सकते हैं. हालांकि उद्यान में प्रवेश केवल शाम 5 बजे तक ही किया जा सकता है. ये उद्यान 15 सितंबर तक खुला रहेगा. दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड में स्नातक कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके अंतर्गत पहली कट ऑफ इस महीने की 22 तारीख को घोषित की जाएगी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल बोर्ड परीक्षा के मेरिट अंकों के आधार पर मिलेगा. पांचवीं कट ऑफ अगले महीने की 26 तारीख को जारी की जाएगी. छात्र प्रवेश प्रक्रिया और कट ऑफ से जुड़ी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं. और मुंबई का रुख करें तो मंत्री अदिति तटकरे का कहना है कि 80 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना का लाभ दिया गया है. महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने गुरुवार को बताया कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना की पहली किस्त जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब तक 80 लाख से ज्यादा पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है. उन्होंने बताया कि 4 अगस्त तक 1,62,00,000 से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया है. उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के शुभ दिन को और अधिक मधुर बनाने के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने लाभार्थियों के खाते में वित्तीय सहायता हस्तांतरण करने के लिए 24 घंटे काम किया. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुरुवार को अभिभावक मंत्री उदय सामंत ने रत्नागिरी में कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया. पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए आजीविका का स्थायी साधन तैयार करने के उद्देश्य से जिले के 4 वार्ड संघों को पर्यटक बसें दी गई हैं. श्री सामंत ने कहा कि एक बस की लागत लगभग 32 लाख रूपये है और महिला मंडल को पर्यटक बस उपलब्ध कराने की ये राज्य में पहली पहल है. और रुख करते हैं कोलकाता का. आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 14 अगस्त की रात प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और आम लोगों पर हुए हमले के विरोध में एसयूसीआई कम्युनिस्ट ने आज 12 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है. वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पश्चिम बंगाल में दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक सड़क नाकाबंदी का आह्वान किया है. सीपीआईएमएल ने लोगों से 16 अगस्त को धिक्कार दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है. आरजीकर घटना को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल और आम लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. ममता बनर्जी के पास गृह और स्वास्थ्य विभाग भी है. तो ये थी महानगरों से जुड़ी कुछ खबरें. और रेणु, हम अपने श्रोताओं को बताते हैं कि किस तरह का मौसम इन महानगरों में रहने वाला है.
जी बिल्कुल.
सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम की बात, क्योंकि मॉनसून सीजन चल रहा है तो कई जगहों पर बारिश हो रही है और जहां बारिश नहीं हो रही है वहां पर लोगों की नाराजगी भी मॉनसून से है. फिलहाल दिल्ली में आज आंशिक तौर पर बादल छाए रहने, कुछ जगहों पर रूक रूक करके हल्की बारिश होने की संभावना है. बारिश होगी तो मौसम निश्चित रूप से सुहावना रहेगा, नहीं तो उमस और गर्मी अभी भी परेशान करेगी, क्योंकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास ही बना रहेगा और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा. मुंबई में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा मुंबई में भी शुरू हो सकती है. पिछले कुछ दिनों से यहां पर मौसम शुष्क बना हुआ था. यहां न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया, अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है. और सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर भारी वर्षा भी होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है.
एंड द रेस्ट ऑफ द 3 मेट्रोज देवेंद्र आर एक्सपेक्टेड टू बी जनरली क्लाउडी स्काई. सो मूविंग ऑन टू चेन्नई, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद मॉडरेट रेन. द मिनिमम टेम्परेचर इज 26 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 34 डिग्रीज. बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद a few spells of rain or thunder showers. The minimum temperature is 22 degrees Celsius and the maximum will be around 30 degrees. And Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 16 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius.
तो हो गई बात मौसम की भी, उम्मीद करते हैं कि इस जो मौसम है मॉनसून का आपके शहर में भी, आपके क्षेत्र में भी जहां से आप हमें सुन रहे हैं वहां पर भी अच्छा रहेगा और आप आनंद उठाएंगे सावन के इस महीने का। और आगे बढ़ते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तो आइए जानते हैं 16 अगस्त के दिन क्या कुछ ऐसा महत्वपूर्ण हुआ जो इतिहास का हिस्सा बना।
जी बिल्कुल,
1777 में अमेरिका ने ब्रिटेन को बोनिन गटोन में युद्ध में हराया था और 1787 में तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी।
एंड ऑन दिस डे इन 1858 द फर्स्ट ट्रांस अटलांटिक टेलीग्राफ मैसेज वॉज सेंट। दिस मैसेज वॉज सेंट बाय ब्रिटेन्स क्वीन विक्टोरिया टू अमेरिकन प्रेसिडेंट जेम्स बुकनन।
जी, 1906 में दक्षिण अमेरिकी देश चिली में 8.6 तीव्रता का भूकंप आया था जिसमें तकरीबन 20,000 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी।
इन 1932 ब्रिटेन इंस्टीट्यूटेड न्यू इलेक्टोरल प्लान फॉर इंडिया टू अलाउ लिमिटेड अनटचेबल्स एंड गिविंग देम सेपरेट रिप्रेजेंटेशन।
जी, और कल ही हमने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है और इससे जब हमें स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, उससे पहले भारत और भारत के जो भारत का अखंड हिस्सा था, अविभाजित भारत था, उसमें बहुत यातनाएं या पीड़ाएं लोगों ने झेली थी। 1946 में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान किया था और इस दौरान हिंसा में कोलकाता में करीब 5,000 लोग मारे गए थे और 15,000 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
यस, दैट वाज अनडिवाइडेड इंडिया। इन 1958 पाथेर पंचाली वन द टॉप 5 अवार्ड्स इंक्लूडिंग फीचर मोशन पिक्चर एंड गॉट अ ऑनररी मेंशन एट द वैंकूवर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। एंड इन 1960 ऑन दिस डे साइप्रस अटेंड फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। द मेडिटेरेनियन आइलैंड कंट्री फर्स्ट केम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन द अर्ली 20th सेंचुरी एज अ स्ट्रेटेजिक ब्रिटिश आउटपोस्ट।
जी, 1990 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण लोप नोर्म किया था। वर्ष 2004 में ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी टीम ने ओलंपिक नौकायन में विश्व रिकॉर्ड कायम किया था और वर्ष 2008 में कांगो में तैनात 125 भारतीय पुलिस अफसरों को संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। और इतिहास में दर्ज इन घटनाओं के बाद अब हम याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनकी आज जयंती, पुण्यतिथि या जन्मदिन है। इस क्रम में सबसे पहले स्मरण करते हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि भी थे। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों की ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो अटल बिहारी वाजपेयी की कविता में देश को आगे ले जाने के लिए, देश में एकजुटता के लिए, समावेशी विकास के लिए सदैव हमें प्रेरक शब्द मिलते हैं, प्रेरक भाव मिलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था और इस महान कवि, हृदय राजनेता ने 2018 में 16 अगस्त को अंतिम सांस ली थी। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने, 1996 में मात्र 13 दिन के लिए। उनका तीसरा कार्यकाल 19 मार्च 1999 में शुरू हुआ और वो 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक अटल बिहारी वाजपेयी 1968 से 1973 तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश का भविष्य विज्ञान और तकनीकी के साथ जोड़ा। उन्होंने परमाणु शक्ति को देश के लिए आवश्यक बताकर 11 मई 1998 को पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए।
यस, अ वेरी टॉवरिंग पर्सनालिटी देवेंद्र। Today we are paying tributes to Ustad Nusrat Fateh Ali Khan, who was a Pakistani singer, songwriter and music director. He was primarily a singer of Qawwali, a form of Sufi devotional music. Often called the Shahenshahi Qawwali or the King of Kings of Qawwali, he is considered by the New York Times to be the greatest Qawwali singer of all times. He was described as the 4th greatest singer of all time by LA Weekly in 2016. He was known for his vocal abilities and could perform at a high level of intensity for several hours. Khan is widely credited with introducing Qawwali music to international audiences and he was also a master of Hindustani classical music.
Ji. इनका जन्म 13 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान में हुआ था. इनके 125 एल्बम हैं. नुसरत फतेह अली खां का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है. जैसा कि रेणु ने बताया कि लगातार कई घंटों तक गाने और इनकी विशेष और सुरीले आलाप के लिए इन्हें श्रोता विशेष तौर पर पसंद करते हैं. नुसरत फतेह अली खान की विलक्षण शख्सियत, आवाज में रवानगी, खनकपन, लहरिया, सुरूर और गायकी का अंदाज सबसे निराला था. सूफी भक्ति गाना सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम से लेकर दमादम मस्त कलंदर, छाप तिलक सब छीनी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी सहित अनगिनत गाने आज भी संगीत रसिकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं. इस महान गायक का सुर हमेशा के लिए शांत हो गया था जब 16 अगस्त 1997 को लंदन में उन्होंने आखिरी सांस ली थी.
And as great as Nusrat Fateh Ali Khan was, we are also here paying tributes to another great personality, Devendra. And unka naam hai Elvis Aaron Presley. Known mononymously as Elvis, was an American singer and actor known as the King of Rock and Roll. He is regarded as one of the most significant cultural figures of the 20th century. His music career began there in 1954 at Sun Records with producer Sam Phillips, who wanted to bring the sound of African American music to a wider audience. Presley is one of the best-selling music artists of all time, with sales estimated around 500 million records worldwide. He was commercially successful in many genres, including pop, country, rockabilly, rhythm and blues, adult, contemporary and gospel. He won 3 Grammy Awards, received the Grammy Lifetime Achievement Award at age 36, and has been inducted into multiple music halls of fame. And in 2018, Presley was posthumously awarded the Presidential Medal of Freedom. And here we are going to listen to this beautiful song sung by Elvis.
Wise men say, only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be?
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध पंजाबी साहित्यकार गुरदयाल सिंह की भी आज पुण्यतिथि है. उन्हें 1999 में ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था. अमृता प्रीतम के बाद गुरदयाल सिंह दूसरे पंजाबी साहित्यकार थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला. गुरदयाल सिंह आम आदमी की बात कहने वाले पंजाबी भाषा के विख्यात कथाकार रहे. कई प्रसिद्ध लेखकों की तरह उपन्यासकार के रूप में उनकी उपलब्धि को भी उनके आरंभिक जीवन के अनुभवों के संदर्भ में देखा जा सकता है. हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान को भी हम आज याद कर रहे हैं. उनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं. उनकी प्रसिद्ध कृति है झांसी की रानी कविता, सुभद्रा जी राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रहीं। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के बाद अपनी अनुभूतियों को उन्होंने कहानी में भी व्यक्त किया, लेकिन जैसा कि हम सभी उन्हें झांसी की रानी कविता के नाम से जानते हैं, तो उनकी इस कविता की कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा। सिंहासन उठ हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 की, वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी के बारे में अपनी कविता से उनके ओज, उनके जोश, उनके समर्पण और देश के लिए या राष्ट्र के लिए लड़ने की भावना को जिस तरह से उन्होंने अपनी कविता में उकेरा, वो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें झांसी की रानी के बारे में हमें बताई।
जी बिल्कुल। एंड मूविंग ऑन टू बर्थडेज, टुडे इज द बर्थडे ऑफ मैडोना, हु इज एन अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड एक्ट्रेस, रिगार्डेड एज द क्वीन ऑफ पॉप। शी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर कंटिन्यूअल री इन्वेंशन एंड वर्सटैलिटी इन म्यूजिक प्रोडक्शन, सॉन्ग राइटिंग एंड विजुअल प्रेजेंटेशन। अ कल्चरल आईकॉन स्पैनिंग बोथ द 20th एंड 21st सेंचुरीज, द रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम कॉल्ड हर वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड फिगर्स ऑफ द मॉडर्न एज। And with sales of over 300 million records worldwide, Madonna is the best-selling female recording artist of all time. So here, let's listen into this beautiful song sung by Madonna called Material Girl.
हिंदी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान का भी आज जन्मदिन है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 2 महीने तक दिल्ली की एक एडवर्टाइजिंग फर्म के लिए काम किया। उसके बाद कपड़ों के ब्रांड के लिए कुछ विज्ञापनों में काम किया, लेकिन बात बहुत बनी नहीं और पहुंचे मुंबई, जहां उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरूआत की। पहली फिल्म 1992 में रिलीज हुई, फिल्म का नाम था परम्परा। बॉक्स ऑफिस पर इसने कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कई ऐसी फिल्में दी जो दर्शकों में बहुत सराही गई। फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए उन्हें 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक गाना। नेपाली मूल की भारतीय अभिनेत्री मनीषा कोइराला का भी आज जन्मदिन है। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा नेपाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम में भी काम किया। वो भरतनाट्यम और मणिपुरी नृत्य में भी पारंगत हैं। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ। वो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की नातिन है। मनीषा की शुरूआती पढ़ाई वाराणसी के वसंत कन्या महाविद्यालय से हुई थी। उसके बाद वो सेकेंडरी की पढ़ाई करने के लिए आर्मी स्कूल दिल्ली पहुंची। मनीषा बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मॉडलिंग ने उन्हें पहुंचा दिया फिल्मी दुनिया में। सौदागर फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू, 1942 लव स्टोरी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस और अकेले हम अकेले तुम के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित हुई और बेस्ट क्रिटिक का अवार्ड जीता। बॉम्बे और खामोशी द म्यूजिकल के लिए भी उन्हें बेस्ट क्रिटिक अवार्ड मिला।
And today is the birthday of Hemlata, who is an Indian classically trained playback singer in Bollywood. She is best known for her songs in the late 1970s, especially Akhiyon Ke Jharon Ko Se song. She was nominated for Filmfare Best Female Playback Award 5 times in the period of 1977 to 81 and won once for Chit Chor in 1977 for her classical rendition of Tu Jo Mere Sur Mein, which was duet with KJ. येसुदास कंपोज बाय रविंद्र जैन, पर यहां पे हम इनका एक बहुत प्यारा सा गाना सुनते हैं।
और इस खूबसूरत गीत के साथ ही अपने श्रोताओं से हम चाहेंगे कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की अनुमति, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड। और कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए newsonair.gov.in पर।
एंड यस, प्लीज स्टे ट्यून फॉर समाचार प्रभात, आर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। नमस्कार, नमस्कार।